राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 नवंबर 1993 साय लगभग 6 बजे दिल्ली में हुआ। राम
वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवद्गीता ये लौकिक होते हुए अलौकिक ग्रंथ है। इसमें वैलक्षण बहुत भरा हुआ है। गीता पर जितनी टीकाएं हुई है इतनी भी टीकाएं नहीं हुई। अनुवाद तो बाइबल पर बहुत हुए हैं, टीका नहीं है। उसके आशय को खोलने के लिए प्रयत्न नहीं किया गया है, केवल अनुवाद भाषांतर किया गया है। गीता के आशय खोलने के लिए बड़े बड़े विद्वानों ने प्रयत्न किया है और फिर भी इसकी गहराई का अंत नहीं आता है। ऐसी विलक्षण भगवद गीता एक पुस्तक है। अब इसका तात्पर्य क्या है तो थोड़े शब्दों में हम कह दें कि मनुष्य मात्र का कल्याण करना इसका तात्पर्य है। ऐसे कल्याण मार्ग बहुत तरह के बताए हुए हैं। अभी पद्मगान मत मतांतर सिद्धांत कई है। कई सिद्धांत होते हुए भी गीता ने ऐसी विलक्षण बात कही है, किसी के साथ विरोध नहीं है, किसी का खंडन नहीं है, परंतु अपनी एक ऐसी विलक्षण बात कही है कि जिसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसी विलक्षण उसमें बातें बताई गई है। आप देखें तो ऐसी साधक संजीवनी में कई बातें खुलेगी आपको, परंतु आप गहरा अध्ययन करें और टीकाओं को भी देखें। अलग अलग मत की टीकाएं हैं, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशेषाद्वैतवाद है और शुद्धाद्वैतवाद है, अचिंत भेदा भेदवाद है, ऐसे कई वाद है जो कि हमारे आचार्यों ने लिखे हैं। तो उन पर अपना अपना मत सबने प्रकट किया है, पर गीता मूल में ऐसे किसी वाद पर नहीं है। भाई अद्वैतवाद का ही वर्णन करें, द्वैतवाद का ही वर्णन करें, विशेषाद्वैत का ही वर्णन करें, ऐसा नहीं है। जीव का कल्याण हो जाए, थोड़े शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक परिस्थिति में रहने वाला मनुष्य अपना कल्याण कर ले, उसके व्यवहार में परमार्थ की कला बताई गई है। व्यवहार में अपना काम धंधा करते हुए उसमें पारमार्थिक कला बता दी गई है। दूसरे में कहते हुए कल्याण करना हो तो अलग हो जाओ, साधु हो जाओ, त्याग कर दो जो कल्याण होगा, दोनों बातें नहीं होगी, ऐसा कहा है। परंतु गीता ने ऐसा कहा है, आप जहां है जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, उसी सिद्धांत को मानते हुए गीता के अनुसार चलो, कल्याण हो जाएगा। तो व्यवहार में परमार्थ कला विलक्षण बताई है भगवद गीता ने। व्यवहार करते हुए तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत भक्ति हो जाए, योग का अनुष्ठान हो जाए, लय योग, राज योग, मंत्र योग, कई तरह के योग है, वे योगों की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भगवद गीता ने बात कही है। अब इतनी सुगम बात क्या है और वो सार बात क्या है गीता में जो कल्याण करने वाली है। हम जो चलते हैं अपने काम में, जैसे जैसे प्रवृत्त होते हैं, उसमें है अपने स्वार्थ और अभिमान का आग्रह छोड़कर और सबके हित की दृष्टि से कार्य करें, वो हित वर्तमान में भी हित हो, भविष्य में भी हित हो, और हमारा भी हित हो, और संपूर्ण जनता का हित हो, ऐसी दृष्टि रख करके चले तो बड़ी सुगमता से उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है जो एकांत में वर्षों तक ऋषि मुनि एक रह करके साधना करते थे, उनको प्राप्ति होती थी, वो इसलिए प्राप्त हो जाए। ऐसी व्यवहार में परमार्थ कला सिखाई है। तो गीता का किसी बात विशेष के लिए नहीं है, जैसे दार्शनिक कई सिद्धांत है उनमें सार क्या है, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है और एक जगत है, ये तीन चीज का वर्णन आता है जो दार्शनिक विषय है। उसमें कई दार्शनिक तीनों को कहते हैं, कई दार्शनिक ईश्वर को नहीं मानते, जीव और जगत को ही मानते हैं, जड़ और चेतन, जीव और अजीव दो ही है ऐसा मानते हैं। तो इस विषय में गीता ने कोई आग्रह नहीं किया। अब जीव के विशेष विषय में कई मत मतांतर आते हैं, कोई कहते अणु प्रमाण जीव है, कोई कहते महत परिणाम परिमाण जीव है, कोई कहते मध्यम परिमाण जीव है, मन जीव का नाप तोल क्या है, इस विषय में बड़े मतभेद है। तो अनुप्रमाण कहने का तो मतलब बालाग्र शतभागस्य शतिधा शतधा कल्पितस्य च जीवो भाग सविज्ञेयो स अनंत्याय कल्पते। अपने बाल एक केश उसका ऊभा चीर करे तो वे सौ किया जाए, बालाग्र शतभागस्य सौ करे फिर एक एक सौ सौ टुकड़ा कर रही हूँ ली उबे लंबे, ऐसा बारी होता ऐसा जीव आत्मा को माना है, कई दार्शनिकों ने ऐसा जीव माना है। और क्यों ने माना, ये अणु परिमाण जीव है, और क्यों ने माना मध्यम परिमाण, मध्यम परिमाण का तात्पर्य कीड़ी में कीड़ी जितना ही जीव है, हाथी में हाथी जितना जीव है, मनुष्य मनुष्य में जितना है उतना परिमाण जीवात्मा है, क्यों ने ऐसा विजन किया है। क्यों ने कहा है कि नहीं महत परिमाण है, बहुत बड़ा भारी जीव है, ये एक शरीर में कभी आ नहीं सकता, अणु और अणियान महतो महियान महान से महान जीव है, ये महत परिमाण जीव है, ऐसे जीव का भेद बताया है। ऐसे ईश्वर के बीच में सगुण है, कहीं कहते निर्गुण है, कहीं कहते साकार है, कहीं कहते निराकार है, कहीं कहते दो भुज है, चतुर्भुज है, सहस्रभुज है, विराट रूप है, ऐसे ईश्वर के विषय में भी व्यक्त है, अव्यक्त है, अवतार लेता है कि नहीं लेता है, ऐसे बहुत भेद अवतारों के विषय में ईश्वर के विषय में किए हैं। ऐसे जगत के विषय में है, ये अनादि है अनंत है, अनादि है और शांत है, अनादि है और परिवर्तनशील है, ये प्रवाह रूप से रहता है और नहीं तो नहीं रहता है, ऐसी बहुत सी बातें जगत के विषय में कही है। भगवद गीता ने इस विषय को ऐसा छेड़ा नहीं है। इसमें क्या है कि जगत क्या है जो तुम्हारे सामने दिखता है, ये जगत है। जीव क्या है कि मैं हूँ, ये जीव है। और ईश्वर क्या है जो सर्वोपरि सबसे ऊंचा है, जैसे वंश परंपरा होती है इसका वो बाप है उसका वो बाप है, ऐसे आखिरी बाप वो परमात्मा है, एक से एक विद्वान है, एक से एक से अधिक धनवान है, एक से एक बुद्धिमान है, एक से एक राजा है, एक से एक बड़ा है, तो सबकी आखिरी तत्व होता है उसका नाम ईश्वर है, वो सबसे बड़ा है, सबसे धनवान है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे अधिक विद्वान है, सब अनंत है, अपार है, असीम है, सब पूरे स्वामी गुरु कार्य नानवच्छेदात, ऐसा योग दर्शन में कहा है। वो पूर्व में जितने जितने ब्रह्मा आदि होते उनका सबका ही गुरु है। काल उसका परिचय नहीं कर सकता, काल कृत देश कृत वस्तु कृत भेद उसमें नहीं है। ऐसे ईश्वर के विषय में बहुत बातें कही है। गीता कहती है एक मालिक है, ईश्वर है, सबका मालिक है। तो तीनों ही बातें इतनी कि जीव मैं हूँ, जगत यह है, ईश्वर सबका मालिक है, इतने में सब बात कह दी, कोई मतभेद नहीं है। उसमें भी एक विलक्षण बात है कि ईश्वर को माने और न माने तो भी गीता के अनुसार चलो, कल्याण हो जाएगा। हरेक सिद्धांत कहते हैं अपने अपने आचार्य को, अपने अपने मत को सिद्धांत नाम देते हैं। भगवान ने अपने मत को सिद्धांत न कहकर मत कहा है। मत समझिए, अपना मत तो हरेक प्रकट कर सकता है, सिद्धांत वो होगा जो सबको मानना पड़ेगा, सर्वोपरि सिद्धांत है। तो गीता ने ये मैं मत में दंग नित्य मंत्र मानवा समय युद्ध तुम मत 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 कहा है। मत आपका मत है, हमारा मत है, ऐसे मत है, भगवान कहते मेरा ये मत है। पंचायत ही बड़ी है वहाँ, संन्यास और त्याग के बीच में 18वें अध्याय में आरंभ में ही तो वहीं कई कहते हैं त्याजी है कर्म, कोई कहते हैं कर्म नहीं त्यागना चाहिए, कोई कहते हैं निष्काम भाव से करना कर्म है, ऐसे भेद बताए 18वें अध्याय का आरंभ में। 12 श्लोक है उसमें, 4 श्लोक तो बहुत विशेषता से इस तरह से वर्णन किया है। तो ऐसे बहुत मतभेद है, पर गीता में कहते हैं आप कोई रहो, किसी संप्रदाय में हो, कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि यहूदी है, पारसी है, क्या है, वो इसमें कोई मतभेद नहीं। आप जिस मत में चलते हैं, जो आप सिद्धांत मानते हैं, आपका उद्देश्य केवल अपना कल्याण करने का हो, ये खास बात है। तो हमें तो अपना उद्धार करना है, इस बात को लेकर गीता में चलो, आपको सामग्री मिलेगी, ईसाइयों को मिलेगी, हिंदुओं को मिलेगी, मुसलमानों को मिलेगी, यहूदियों को भी मिलेगी, पारसियों को भी मिलेगी, जितने संसार में मत मतांतर संप्रदाय है सबको उनकी मत मिलेगी। पर उसमें भगवान के ये मैं मत मेदक देते मनुष्य माना, मेरे मत का जो अनुष्ठान करते हैं वो चिंतित भी कर्म भी वे भी सब कर्म से मुक्त हो जाते हैं। उस मत का विवेचन एक श्लोक याद आ गया, गीता भर में कर्मियों का प्रधान अध्याय है 3रा, और 3रे अध्याय में मुख्य है 30वां, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म शीतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। ये एक श्लोक ऐसा है, किसी जोड़ी का कर्मयोग के विषय में 10 श्लोक नहीं है गीता में, 700 में इतनी विधि बता दी है। उसमें यह क्या, ये मैं मत मृदंग अनुतिष्ठन्ति माना, मेरे मत का अनुष्ठान करते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं, और मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते हैं उसका पतन हो जाता है। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सब काम भगवान के लिए करे, भगवान के लिए करने से अपने लिए नहीं होगा ये बात नहीं है। जैसे भगवान के भक्त भगवान को भोग लगाते हैं तो जैसी वस्तु परोसते वैसी की वैसी मिलती है, उसमें कम नहीं होता। आप माप करें तोल करके देख ले, कोई कम नहीं होता, परंतु वो महान पवित्र हो जाती है चीज भगवान के अर्पण करने से। संसार में दान करने के लिए जितनी चीजें हैं, वो दान करने की चीज जो अपने नहीं है औरों के लिए ऐसा हित करने से वो वस्तु बड़ी पवित्र हो जाती है, और अपने लिए करने से वो चीज अपवित्र हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा मैं विवेचन करता हूँ, आप ध्यान दें। जैसे आपके यहाँ रसोई बनती है, अब रसोई अब सबके लिए बनी है, उसमें कोई भिक्षु आ जाए भोजन करा, जिसकी इच्छा है भी भोजन करूंगा, ऐसे साधु आ जितने आ जाए, कोई और मांगने वाला आ जाए तो उसमें उसको दे दिया, तो उसके लिए वो रसोई बनानी नहीं पड़ती। भाई कुत्ते को टुकड़ा डाल दिया तो रसोई कुत्ते के लिए बनाई जाती है क्या? बनाई नहीं जाती है, अपने लिए बनाते हैं। तो वहाँ भगवान कहते हैं अपने लिए न बना करके सबके लिए बनाओ पहले से ही, घर में सब पावे और भी भूखा जो उसको दे दी, सबके लिए है। ये परमात्मा के लिए हम करते हैं, परमात्मा लिए करते हैं ये भक्ति योग हो जाएगा, और हम जनता के लिए करते हैं ये कर्मयोग हो जाएगा। और ये तो केवल करना कर्तव्य है, कर दिया ऐसा कर्तव्य मात्र समझ करके और अपने को अलग कर दिया तो ज्ञान योग हो जाएगा। तो सबके लिए करना, अपने लिए नहीं। भुंजते त्वगम पापा ये पतंत्यात्म कारणात्, जो अपने लिए ही भोजन पकाते हैं वे पापी कोरे पाप का ही भक्षण करते हैं। अब भाव देखो कितनी बात है कि भाई सबके लिए जो जो आ जाए सब भगत पर सब इसके भागीदार है। तो कोई आ जाता मानो उसको भी दे देते हैं, घर के बाल बच्चे भी खाते हैं, कुत्ते को कौए को आदि उसको भी दे दिया जाए। तो वो ऐसे उदार भाव के मेरे लिए ऐसा नहीं, तो ये एक विचित्र भाव है। इस भाव से आप करके देखो बड़ी शांति मिलती है। बड़ी सीधी सरल बात है कि हमारे पास चीज है सबके लिए है, भगत पर हम भोजन करते हैं तो कोई भूखा आ जाए तो भूखे को दे दिया थोड़ा इतना हम दे सकते हैं भाई, कि सब दे दो, सब तो कैसे दे दे, सब तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आपके जितना आप ले लो उसमें थोड़ा दे दो ज्यादा दे दो, ऐसे उनके लिए बनाया जाए तो उनमें वो पवित्र भोजन होता है, बड़ा पवित्र होता है। इस वास्ते संतों की जो भिक्षा वृत्ति है इसको शास्त्र ने बहुत पवित्र वृत्ति बनाया है, बड़ा पवित्र अन्न होता है वो, क्योंकि सबके लिए बनता है उसमें से थोड़ा साधु को भी दे दिया तो साधु के ऊपर भार नहीं होता उसका, और बड़ी अच्छे से पेट भराई हो जाती है, कई घरों से घर तो हमारा पूर्ति हो जाती है और किसी को भी कष्ट नहीं होता। इसको माधुकरी वृत्ति कहते हैं, अपनी भिक्षा मांग ली कई घरों से उसको माधुकरी वृत्ति। मधुकुर नाम भवरे का है, भवर होता है षटफल, काला भवरा जो होता है उसको मधु कहते हैं, और मधुमाखी हो तो उसको भी कहते हैं। तो क्या करते है कि एक पुष्प पर बैठती है, थोड़ा सा रस उससे ले लिया, थोड़ा सा उससे ले लिया, थोड़ा सा उससे ले लिया, ऐसे भावना देता है। मधुमाखी भी इस तरह से पुष्प पर थोड़ा थोड़ा तो ग्रहण कर देती है, तो पुष्प का नुकसान नहीं करती, पुष्प सबका सबका सब नहीं लेती, वो थोड़ा थोड़ा लेकर शहद का संग्रह कर लेती है। तो मधुकर की वृत्ति है वो माधुकरी वृत्ति है, घर घर से अपना थोड़ा दे लिया, अपना पा लिया, किसी पर भार नहीं पड़े उसका। इस तरह से ग्रस्त भी अपना भोजन बनावे सबके लिए, विश्व मात्र के भाई विष्णुदेव होता है उसका विष्णुदेव किया जाए, यज्ञ किया जाए, उसमें कई आहुतियां दी जाती है, वो भोजन तैयार हो जाए तो अग्नि भी आहुति दी जाती है, देवताओं को दी जाती है, परमात्मा सबको हो एकदम ब्रह्मणे नमः कहकर मेरे लिए नहीं सबके लिए ऐसे किया जाता है तो सबका उद्धार हो जाता है। हमारी संस्कृति है भारतीय बड़ी विचित्र है, उस संस्कृति का वर्णन गीता में आया है, शास्त्रों में भी आया है। हमारे यहाँ तर्पण करते हैं, मरने के बाद उनको पिंड देते हैं, जल देते हैं, तो पिंड देते हैं अन्न देते हैं और पानी देते हैं, वो जल देते हैं पानी देते हैं, उनको तर्पण करते हैं, तृप्ति करते हैं। उस तृप्ति में और पिंड में सब देवताओं को देते हैं, ईश्वर को देते हैं और जीवों को भी देते हैं, और तर्पण करते हैं सब जीवों को भी करते हैं। आप सुन तो आश्चर्य होता होगा, समुद्र को भी तृप्ति करते, समुद्र तृप्यंता, समुद्रों को तर्पण करते हैं, शत्रुओं को समुद्रों को भी जल मिलाते हैं, और भगवान सूरज को भी दीपक दिखाते, दीपक से आरती करते हैं, दीपक दिखाते उसे अर्पण करते हैं। क्या प्रकाश की कमी है सूरज की, क्या समुद्र में जल की कमी है, कमियों में नहीं। हमारा कर्तव्य है कि सबको अर्पण करे, सबकी सेवा करे और सबको सुख पहुंचावे, ये भाव हमारा, ये उदार भाव ही कल्याण करने वाला है। तो वो इस भाव से गीता कहती है सबका कल्याण हो जाए, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो अपने लिए न करके सबके लिए किया जाए, उसमें भोजन किया जाए, उसको यज्ञ शेष कहते हैं। दो बार आया तीसरे चौथे अध्याय में, यज्ञ का शेष भाग है जो यज्ञ कर दिया जाए सबके लिए, उसमें बचाए वो पूरा का पूरा पड़ा वो शेष हो जाता है, वो शेष भोजन यज्ञ शिष्टा सुन तो मुचिंते सर्व के लिए यज्ञ शेष भोजन करने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टापृत भूतो जानती ब्रह्म सनातन, यज्ञ शेष भोजन करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप संसार के लिए भोजन बनावे, भगवान के लिए भोजन बनावे और प्रकृति के लिए हो जाए, ऐसे करने से वो सबके लिए संसार के लिए भोजन हो जाता है। तो खर्च उतना ही है और उतने खर्च में भाव आपका उदार हो जाए तो उदार भाव ही कल्याण करने वाला है, वस्तु कल्याण करने वाली नहीं है। अगर वस्तु कल्याण करने वाली हो तब तो लखपति करोड़पति अरबपति भी अपना कल्याण कर लेंगे, साधारण आदमी को कल्याण नहीं मिलेगा। और मेरे जैसों को तो मिलेगा ही कैसे, है ही नहीं पास में कुछ भी, तो कल्याण कैसे मिलेगा। तो ये कोई बात नहीं है कि इतना धन खर्च से होता है, इतनी वस्तुओं के देने से होता है, ऐसा नहीं है। अपना भाव सबके हित का हो तो भाव की महिमा गीता ने कही है। भाव है ना सतो विद्यते, भाव आधा भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, अनित्य सत असत है उसका भाव नहीं होता। तो भाव मात्र से भावग्राही जनार्दन सबको सुख पहुंचे, सर्वे भवति सुखिनः। तो आप लोगों से कहना है आप लोग हरेक काम ऐसा भाव रखें, खर्चा कुछ नहीं, खर्चा जितना अभी होता उतना ही है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। किसी को भूखा देखो तो इसको भी दे दो, थोड़ी दे दो रोटी दे दो, कहो ग्रास दे दो, थोड़ी सी सहायता कर दो, थोड़ा सा अन्न दे दो, थोड़ा सा वस्त्र दे दो, थोड़ा सा जल पिला दो, थोड़ा सा आश्रय दे दो। कोई पथिक आया है तो भाई थोड़ी देर तुम मेरा साथ रह जाओ या बाहर रह जाओ खूब मौज से, ऐसे उनको आश्रय देना। भाव सबको सुख पहुंचाने का हो, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से त्रिलोकी का जल पिलाने का पुण्य, त्रिलोकी को जल पिलाने का पुण्य हो जाएगा। कितनी आश्चर्य की बात है। ए सूर्य सहस्रारो तेजो राशि जगत पते अनुकंप माम भक्त्या गृहाण अर्घ्यम नमोस्तुते, ऐसे अर्घ्य दिया जाए त्रिलोकी को जल पिलाने का मात्र हो जाएगा। क्योंकि सूर्य भगवान से ही ये जल ऊपर खींचता है, किरणों में चढ़ता है, उससे ही फिर वो बरसता है, समुद्र से जल चढ़ता है वो मीठा हो जाता है और फिर बरसात होती है। तो सूर्य से ही वर्षा होती है। तो सूर्य को तीन अर्घ्य हम दे दें रोजाना, मंत्र याद ना हो, भाई बहने माताएं हैं जो पढ़े लिखे नहीं है उनको याद नहीं हो, तो श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः कह दे। भाव सूर्य भगवत लेना है तो लोग उधर पिलाने का मातम हो जाए उसको। ऐसे भाव अपना उदार हो, काम कोई भी किया जाए सबके लिए, अगर सबके हित के लिए किया जाए तो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी मत मतांतर को मानने वाला हो, चाहे हिंदू मुसलमान ईसाई कोई क्यों हो, कोई हो, वो ऐसा भाव रखता है उसका कल्याण हो जाएगा। ये जो अयं निज परोवेती गणना लघु चेत शाम, अंतकरण तुच्छ होता है उसमें ये तो हमारे हैं, ये हमारे नहीं है, जैसा नहीं ये तो भगवान के सब ही। उदार चरितारंतु वसुधैव कुटुंबकम्, संपूर्ण वस्तु कुटुंब सब ही सबका हित करते हैं। रामायण में आया नहीं, उमा संत की ये बड़ाई, मंद करते जो करे ही भलाई, जो मंद करता है उसको भी भला करते हैं, सबका ही भला करते हैं सदा ही। तो गीता इस बात को कहती है कि सबको हित करो, सबको दो जो अपना है अर्पण कर दो, उसमें एक जगह बांध करके वस्तु रख देना है वो अशुद्ध हो जाती है और रहने से निर्मल हो जाती है। जैसे मान लो कि एक कोई सज्जन है और अपना काम करता है, नौकरी करता है, वो रसोई बनाता है अपने लिए, तो थोड़ा सा रसोई बनाता है। तो भिक्षु हम लोग जो जाते हैं भिक्षा के लिए, तो अचानक हम चले गए उसी घर पर ही जिसने अपने रसोई बनाई है, तो जाते ही मन में संकोच होता है इसने अकेले ने बनाई है उसमें से कम हो जाएगी, परंतु चले गए। तो वो कहता महाराज भिक्षा लो, हम कहते दे दो भाई भिक्षा दे दो, तो वो भिक्षा दे देता है थोड़ी, उसने थोड़ी लेंगे भाई, थोड़ा लेंगे हम तो ज्यादा नहीं लेंगे, क्यों मधु करते हैं, मधुकरी वृत्ति है लेना है, तो उसको लेते हैं देते हैं। तो वो भोजन वो देता है बड़े प्रेम से, हम भिक्षा ले लेते हैं, परंतु इसमें ध्यान देना थोड़ा सा। उसने रसोई बना ली, रसोई बनाने के बाद हम हमारे को दे सकते हैं, पर उसने अपनी थाली में परोस लिया, कभी हम भोजन करूंगा और बार बार कौन लेगा, दाल भात साग रोटी जितना था अपनी थाली में परोस लिया। अब कोई साधु आए तो जितना रसोई में बना हुआ पदार्थ वो शुद्ध था, उतना थाली में परोसने बाद शुद्ध नहीं रहा, तो वो अशुद्ध हो गया। क्यों आत्मा, अब तो मैं भोजन करूंगा, ये भाव हुआ ना, अपने भोजन करने के लिए थाली में परोस दिया। उसमें फिर देने में संकोच होता है, साधु को लेने में भी संकोच होता है, भाई थाली में से कैसे ले ले, इसने अपने भोजन करने की तैयारी कर दी है, तो दोनों को संकोच होगा। फिर भी किसी कारण होते इसका संतोष होता, अच्छा थोड़ा दे दो ग्रास दे दो। अब उसमें से ग्रास बना लिया तो वो उतना शुद्ध नहीं रहा, जितना रसोई में था उतना शुद्ध थाली में परोसने पर नहीं रहा, थाली में परोसने पर ग्रास बना लिया भोजन करने के लिए वो उतना शुद्ध नहीं रहा, और वो मुंह से छुआ दिया अब शुद्ध नहीं रहा, अब जूठन हो गया अशुद्ध हो गया, और मुंह में चबा लिया अब बहुत शुद्ध हो गया, और वो निगल दिया अब दूसरे दिन मैला बन जाता है तो महान अशुद्ध हुआ। तो अपने लिए करने से अशुद्ध होती होती अशुद्ध महान अशुद्ध चीज हो जाएगी, और जंगल में आप टट्टी फिर के आ जाए उसमें हवा लगती है घाम लगता है वर्षा होती है तो मिट्टी में मिट्टी हो जाती है, पता ही नहीं लगता कहाँ मेरा पन था। तो अपने त्याग करने से मैले जैसी पेशाब जैसी वस्तु निर्मल शुद्ध हो जाती है, पता ही नहीं लगता कहाँ मेरा पन था कहाँ पेशाब था इसे पता ही नहीं लगता, शुद्ध हो जाती है। और अपने लिए बनाने से अशुद्ध हो जाती है। तो जो जो अपने स्वार्थ को करते हैं तो ही तो हम अपना बंधन में जाते हैं, हम वस्तुओं को अशुद्ध कर देते हैं, जगह को हम अशुद्ध कर देते हैं अपने भावना से, और उदार से रहे सबकी चीज है भाई, सब लोग सबका हिस्सा है, शक्ति के अनुसार वो भी सबको देना अपने संभव ही नहीं है। एक आदमी सबको संपूर्ण मनुष्यों को तृप्त करे ये तो दूर रही, सब लोग मिलकर के एक आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लिखा है कि स्नान हरिण्यम पशु नाल में कश्य तृप्त्यर्थ विधिमत्वा समम प्रदेत, सबके सब लोग एक आदमी की इच्छा पूर्ति करना चाहे तो नहीं कर सकता, भोजन तो करा सकता है मन इच्छा पूर्ति करे। तन की भूख इतनी बड़ी आद शेर है वह शेर, और मन की भूख इतनी बड़ी गिर जाती गिरिमेर सुमेर पड़ू तो निकल जाता सब चबते ही नहीं, मन की इतनी भूख तो ऐसे तो कौन तृप्ति कर सकता है। तो अपना सबके लिए है ऐसा भाव, सबके सबके सुख हो जाए सबको ही, तो ऐसा करने से गीता एक सिद्धांत बताती कि तुम्हारे कल्याण हो जाए। तो मुक्ति बताना कल्याण का काम, कल्याण कर देना ये गीता का सिद्धांत है, इसमें बात विशेष नहीं है, कोई विवाद नहीं। ममे वांशो जीव लोगे, जीव के विषय में मेरा अंश है इतना बताया है, रामायण में बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, और मैं हूँ अजो भीषण अभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वर भीषण प्रकृति सामिष्ठा संभवम्यात्म माया, ये चौथे अध्याय छठ श्लोक अभी आप लोगों ने सामने पाठ किया था, ये पांच श्लोक ईश्वर का वर्णन के हैं, अवतार के वर्णन में है छठा सातवां आठवां नौवां दसवां। तो अज होता हुआ भी अजो भीषण अभ्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर भीषण, अज मानो जन्म रहित होता हुआ भी, अभ्यय आत्मा मानो मेरे खर्च नहीं कम होता ही नहीं घटता ही नहीं मरता ही नहीं अभ्यय आत्मा, और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होता हुआ भी, अज होता जन्म ले लेता हूँ और अविनाशी होता हुआ भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ, और संपूर्ण के ईश्वर होते ही पुत्र बन जाता हूँ, और दशरथ जी का आज्ञा पालन करने के लिए जंगल में चले गए। उसमें बात आई अध्यात्म रामायण में बड़ी विचित्र आई है, वाल्मीकि रामायण में आई है, तुलसी में थोड़ी आई है बात, वनवास में जाने लगे दशरथ जी कहते हैं आप वनवास में भेजने वाला है कौन, मैं राजगद्दी बैठाऊंगा आपको कौन भेजता है, राजा दशरथ कैद कर दूंगा मैं, और भरत को भी मैं जो आ जाएगा अपने ननिहाल से उसको मैं जीत लूंगा, और भरत का मामा युधाजीत आ जाए तो उसको भी मैं परास्त कर दूंगा। हम जो शस्त्र धारण करते हैं ये श्रृंगार के लिए थोड़ी है, बड़े जोर से बिगड़े यार आपको मैं राजगद्दी बैठाऊंगा, कौन ये पिता कहते हैं कि नहीं बैठाएंगे, गाती आपकी है, ऐसे तेज हो गए। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण राज्य सच्चा हो तो उसके लिए विचार किया जाए। ये तो एक नष्ट होने वाला भाई, अपना संबंध रहने वाला नहीं है। फिर पिता ने कह दिया, उसमें महाराज भगवान ने इतनी विलक्षण, सीता का सदा के लिए त्याग कर सकता हूँ, पिता के लिए क्या नहीं कर सकता, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, उनके वचन है। अब पिता आगे पान ईश्वर होते हुए भी, उस समय भी भगवान ईश्वर होते हुए दशरथ जी के ऊपर भी शासन भगवान का हो रहा है, उस समय भी उनके मालिक होते हुए भी दास बने हुए हैं, आज्ञापालक बने हुए हैं। माँ के कहने के बीच में, क्योंकि माता ने कह दिया तो कितनी विलक्षणता है कि माँ बाप का कहने वाला पुत्र, कहना करने वाला पुत्र दुर्लभ है, दुर्लभ जन नहीं है संसारा जो माँ पिता पोषण हारा। तो मैं ऐसा वो करूँ तो माँ को कितना ऊंचा दर्जा देते हैं। और राम जी जब जाते हैं माता कौशल्या के यहाँ नमस्कार करने को, तो वहाँ पर वो तो माता तो हर्ष में भरी, आज राजगद्दी हो गई और सवारी निकलेगी, देरी हो जाएगी, तो देर से बेटा कुछ खा लो, स्नान कर, भोजन कर, कुछ भोजन कर लो, क्योंकि बहुत देरी हो जाएगी राजगद्दी घूमेगी, सवारी देरी हुई तो भूख लग जाएगी। ऐसा कह दो राम जी ने कहा, माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, वनवास हो गया नहीं, वन का राज्य मिल गया मेरे को, पिताजी ने वन का राज्य दे दिया मेरे को, मंत्री पुत्र ने कहा ऐसी ऐसी बात हुई। तब ऐसी बात सुन के कौशल्या जी कहती है कि तुम्हारे अगर पिताजी ने वनवास दिया है तो जन जाओ जान बड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा होता है, पिता से 100 गुना अधिक माँ का दर्जा, कहीं 10 गुना अधिक माँ का दर्जा, मातृशक्ति का दर्जा माँ का दर्जा है, स्त्री का दर्जा इतना नहीं है। सीता जी जैसी पतिव्रता स्त्री जगत जननी कहलाती है, उसके लिए भी राम जी ने कहा कि नारी हानि, नारी का नाश ना कोई बड़ी हानि को सुनाई। जब लक्ष्मण जी के बाण लगा है तो वहाँ लंका में कहा कि नारी है विशेष क्षति नहीं, अगर सीता ना मिले तो विशेष क्षति नहीं है, पर भाई मर जाए तो हमारा बड़ा नुकसान है, बिना जगत सहोदर भाता भाई नहीं मिलेगा, तो स्त्री का दर्जा ऊंचा नहीं है, ऊंचा दर्जा है माँ का। आजकल हमारी माँ बनना बंद करती है, माँ बनना दर्जा है, स्त्री बनना दर्जा ऊंचा नहीं है, आपका तुच्छ दर्जा है, जूती की तरह आपकी इज्जत है। और माँ बने तो पिता से 100 गुना अधिक माँ का दर्जा। वो कौशल्या कह रही है कि तुम्हारे पिता ने अगर वनवास दिया है तो मैं रखता हूँ यहाँ पर, दोनों बात आई, मैं रखू घर पर, पिता भेजते वनवास में, तो जन जाओ जान बड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा मैं रखूंगी, इस वास्ते मेरी बात तेरे को माननी पड़ेगी। फिर कहती है कि जो पितुमात कहू बन जाना तो कानन शतावध समाना, जो तुम्हारी छोटी माँ ने कहा है मन में तो बेटा राज्य से 100 गुना अधिक है, तो पिताजी से तो 100 गुना अधिक मेरा अधिकार है और मेरे से 100 गुना अधिक छोटी रानी का है, जो तुम्हारी छोटी माँ है तो बनवा 100 गुना अधिक है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि पिता से 100 गुना अधिक माता अपनी जन्म देने वाली, और जन्म देने माती से ऊंचा चाची है, ताई है, जो घर में माता के समान है, उनका दर्जा अपने जन्म देने वाले से माँ से भी 100 गुना अधिक है, ऐसा आदर करो, इस तरह से बात करो। तो ये उदार भाव त्याग से होता है, त्याग शांतिरंतम गीता में त्याग की महिमा कही है, कर्म योग में क्या त्याग ही है, कर्म करो परंतु अपने लिए दुनिया के लिए करो, औरों के हित के लिए करो, ये त्याग होता है, इस त्याग से कल्याण की प्राप्ति हो जाती है, त्याग शांति निरंतरम। सज्जन में क्या क्यों बात ज्ञान आ गई, आप टट्टी पेशाब फिरते हैं और पेशाब साफ लग जाए, साफ हो जाए तो चित्त प्रसन्नता हो जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, निरोग हो जाता है, मैली से मैली वस्तु का भी त्याग शांति देने वाला है, द्रव्य आदि का दूसरों के हित के लिए त्याग किया जाए तो उतना कितना महत्व है उसका, कितना महत्व है। तो उस त्याग की महिमा जान गई संन्यास से माँ हो त्याग से, 18वें अध्याय में संन्यास और त्याग की महिमा अर्जुन ने पूछी, तो त्याग का विवेचन किया उसने, तो भगवान ने त्याग का त्यागी का वर्णन किया है, 18वें अध्याय के 2 श्लोक से 12 श्लोक तक त्याग का वर्णन किया है, उसके बाद संन्यास का वर्णन किया है, संन्यास का 13 श्लोक से लेकर 13वें से लेकर 40वें श्लोक तक त्याग का वर्णन किया है, उसके बाद फिर संन्यास का वर्णन किया है, यानी संन्यास क्रांत योग का वर्णन किया। इसमें भी त्याग बारह तक है, 13 से 40 तक त्याग का वर्णन, कर्म योग का वर्णन है, फिर 48 के बाद 49 से 55 तक सांख्य का वर्णन किया है, और 56 से 66 तक ये भक्ति का वर्णन किया है। तो त्याग की कितनी अलौकिक महिमा बताई है। संन्यास से करो, त्याग से करो, त्याग ही तो अपना त्याग कर दो। त्याग क्या करना, स्वार्थ का त्याग। एक बात और मार्मिक बताऊं आपको, त्याग किसका होता है, जो अपनी नहीं होती उसका त्याग होता है, अपनी नहीं है उसका त्याग होता है। आश्चर्य आएगा आपको, हम ही नहीं है, त्याग क्या करें। अरे जो अपनी नहीं है, जो अपनी मान ली है, इस भूल का सुधार होता है। आप हम आए हैं, उससे पहले लाए नहीं साथ में, और पहली चीज थी उसके मालिक हम बन गए। ब्याह करके किसी घर की कन्या आती है, वहां बहू बन जाती, मालिक बन जाती है। तो मालिक बनी हुई जो अपनी चीज है उसका त्याग करना है, मन से कि ये हमारी नहीं है, सबकी है, इतनी सी बात है, कल्याण हो जाएगा। ये गीता बड़ी जोर से कह रही है, कितनी विचित्र बात है, अरे कितनी सुगम है। तो त्याग, अपने स्वरूप का त्याग नहीं कर सकता कोई भी, अपनी वस्तु का त्याग कैसे करेगा। जो अपनी नहीं है उसको अपनी मान ली है, तो वो अपनी मान्यता है, ये गलती करी है, इस गलती का सुधार कर दो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सब आप निर्मुमो निरहंकार शांति वाली गति, शरीर में मैंपन और मेरापन वस्तुओं में, इसको आप भगवान का, मैं नहीं हूँ, ये तो भगवान की है, मेरा शरीर भगवान का है, मन वाणी शरीर भगवान का है, अंतकरण शरीर भगवान का है, प्राण भगवान के हैं, अथवा संसार के हैं, संसार के तो कर्म योग हो जाएगा, भगवान के तो भक्ति योग हो जाएगा, के प्रकृति मात्र संग ज्ञान योग हो जाएगा, अपना मन जन्म मरण योग हो जाएगा। अपना मान लो इनको, जन्म मरण होगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, अपना है नहीं, मिलेगा कैसे, अपने पास रहेगा कैसे। तो ऐसी गीता समझाती है कि इसमें केवल आप भाव ऐसा बना लो, जो काम करो सबके हित के करो, ते प्राप्त अंतिमामेव सर्वभूत हिते रता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई। तो सर्वभूत हिते रता का सबका हित का हो जाए। ज्ञान में भी ये बताया, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीर कलमशा छिन्न द्वेधा यथात्मान सर्वभूते। पांचवें अध्याय में ब्रह्म निर्वाण निर्गुण की प्राप्ति होती है सबके हित रत्न हित में रत्न होने से, और बारहवें अध्याय में वहाँ हित रे अपने कृषु अधिक तरस देशम अभ्यक्ता सत्ता अभ्यक्ता गरीब दुख देव अधिक व्याप्य थे संयम इंद्रिय ग्राह सर्वत्र समृद्ध अति प्राप्त माम एवं सर्वभूति रहता। तो सर्वभूति माम प्राप्त होती, मेरे को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सबका हित करो, सगुण की प्राप्ति चाहो तो सबका हित करो, ज्ञान चाहो विगत संग से मुक्त से ज्ञान अवश्य ये क्या याद करता कर्म, सब हित के लिए काम करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान योग सिद्ध हो जाए, कर्म योग सिद्ध हो जाए, भक्ति योग सिद्ध हो जाए, सब योग सिद्ध हो जाएंगे। जो अपने साथ का त्याग कर काम करो, अपने मिटेगा कुछ नहीं, हमारे पास खर्च कुछ नहीं होगा, हमारे जितना ही खर्च होगा भाव के त्याग का होगा। हाँ, कभी मौका पड़ने पर अपने भूखा रहकर भी जरूर भोजन देना हो, ये कभी कभी पड़ेगा। ऐसे भाव रखने वाले को कभी कभी ऐसा मौका भी पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं, एकादशी करते हैं, कभी अन्न मिलता भी नहीं। अभी देश का विभाजन हुआ उस समय में कई लोग उस पाकिस्तान से आए, जिसको 10-10 रुपया देने पर गिलास एक पानी का नहीं मिला, बड़ी मुश्किल हो गई। तो ऐसे मिलना कोई हाथ की बात नहीं है, तो भूखा पैसा नहीं पड़ता है, तो वो सबके हित के लिए भूखे रह जाए, कल्याण हो जाएगा, सबको सबको सुख हो जाए, सबको आराम मिल जाए, ये त्याग है। तो त्याग अपनी वस्तु का होता है, जो अपनी नहीं, जो अपनी मानी हुई है, वो माननी हुई अपने का त्याग कर देना। मानो मेरी नहीं है, संसार की है कर्म योग हो गया, भगवान की है भक्ति योग हो गया, और प्रकृति है संसार की प्रकृति है ज्ञान योग हो गया, और अपने निमान धर्म मन योग हो गया। कितनी सरल सीधी बात बताई है, सबका कल्याण। गीता का सिद्धांत, मात्र प्राणी का कल्याण हो जाए, वो अपने मत को मानता रहे। वो सिद्धांत में मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई हो, अपने सिद्धांत में रहते हुए, अपने नियमों का पालन करते हुए त्याग करे। ये त्याग में सब एक हो जाते हैं। त्याग में मतलब हित नहीं रहता। दो तरह की है, एक बात बता दूं बीच में, दो तरह की बात है। हमारे नियम होते हैं, कई हमारे नियम पालन करने के होते हैं, काम करने के पालन होते हैं, और कई त्यागने के होते हैं। तो काम करने में तो मतभेद होगा, अब जैन होगा तो उन्होंने पट्टी रखनी होगी और हमारी पट्टी होगी। तो विधि जो है वो अद्वैत होती है। कोई देवताओं का पूजन करता है, कोई ऋषियों का पूजन करता है, कोई माँ बाप का पूजन करता है, कोई अतिथि का पूजन करता है, वो अलग अलग होगा नियम, पर त्याग एक होगा। दूसरों के हित के लिए अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर देना, ये एक होगा। गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं कि मैं ही करता हूँ, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, ऐसे अभिमान का त्याग करके सब गीते लिए काम करे। अरे बुद्धि यस्य न लिप्यते, बुद्धि में ममता है, लेप होता है, घड़ी मेरी है, ऐसे इसमें मन में लिप्तता हो जाती है, ये मानने वाली है। तो यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, हत्वा भी से मान लो का नहंति न निवृत्ति, वो अगर संपूर्ण लोगों को मार दे तो वो मारता भी नहीं है और बंधता भी नहीं है, अपना स्वभाव है ही, उसे मर जाए तो कोई ना हो पुण्य होगा ना पाप होगा, दोनों से ऊंचा तो मुक्त हो जाएगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह जोरों से चलता है, उस प्रवाह में गाय बह जाए कि ब्राह्मण मर जाए तो क्या गोहत्या ब्रह्मत्या गंगा जी लग जाएगी? कोई लगे नहीं। और कई खेत पी गए, हजारों प्राणियों को पाने के लिए अन्न मिल गया, गंगा जी के धारा से खेती उत्पन्न हो गई, तो गंगा जी कोई पुण्य हो गया? कई गौएं पी गई, कई ब्राह्मण पी गए, तो गौओं के ब्राह्मण को पानी पिलाने को पुण्य हो जाएगा? अरे पुण्य क्या है, वो तो बह रहा है, जिसकी मर्जी वो अपने काम में ले लो। तो इसे गंगा जी के प्रवाह की तरह संपूर्ण के हित के लिए जो कार्य कर रहा है वो मुक्त हो जाएगा, चाहे हिंदू मुसलमान ईसाई कोई कान हो। तो ये कल्याण करने का मार्ग गीता बता रही है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थोप कौन थे, न करोते न लिप्यते, शरीर में रहता हुए न करता है लिप्त होता है। यथा प्रकाश, जैसे सूरज अकेला संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, परंतु सूरज में अभिमान है कि मैं प्रकाशित करूं, मैं अंधेरा दूर कर दूं, ऐसा कोई अहंकार है, अहंकार नहीं है। जैसे आकाश सब जगह रहता हुआ, सब जगह रहता व्यापक होता हुआ, लिप्त किसी में नहीं होता, यह पदार्थ है, यह आकाश है, यह आकाश में लिप्त होता है, कहीं ये गीला हो जाए, कहीं ये गर्म हो जाए, कहीं ये चिपचिपा हो जाए, कहीं ठीक हो जाए, कहीं बैठे नहीं हुए, ऐसे आत्मा निर्लिप रह जाता है। तो निर्लिप्तता, निरहंकार, निर्मम विहाय कामान या सर्वान पुमान से निष्प्रिय, कामनाओं का त्याग करके और निष्प्रिय होकर बर्ताव करता है, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। सीधा सीधा खर्चा वही आपको करना पड़ेगा, बालक बालिकाओं के लिए खर्चा करने पर गया, अतिथि सत्कार भी आपको करना पड़ेगा, घर पर कोई आ जाए तो भोजन देना पड़ेगा, भिक्षु को भी रोटी देने पड़ेगी, कुत्ते कौए को भी कुछ देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अब आप मन में समझेंगे सबके लिए है। हमारे हिंदुस्तान में खेती करने वाले भी जब खेत करते हैं, मैंने देखा है, मैं सुना है, मैं गया हूँ, देखा है मैंने, तो खेती करने वाले कहते महाराज किसी के भाग का, पशुओं के भाग का, पक्षियों के भाग का, चिड़ी कमेड़ी कमेड़ी आदि के, चिड़िया आदि गांव का, अटव पटव के, बैठे और पथी पथिक के भाग का महाराज मिल जाए, हम खेती करते हैं। तो हमारी खेती हमारा नहीं, सबको मिले। और खेती निभती है तो खेती पकती तो पहले फल आता है, चाहे वो टेंसी आवे, चाहे काकड़ी आवे, चाहे मतीरा आवे, चाहे सीटा आवे, जो आवे वो पहला ब्राह्मणों को भेजते हैं अथवा साधुओं को भेज देते हैं, फिर अपना लेते हैं। ऐसे रसोई बन जाए तो पहले अतिथि को सत्कार कर, पीछे वो भोजन करो अपना, वो यज्ञशेष अमृत अमृत भोजन हो जाता है। तो उसका भाव सबके हित करने का होता है, तो सबका हित करने से अपना हित मुफ्त में हो जाता है, स्वाभाविक हित हो जाता है। तो इस तरह के गीता का उदार भाव है, ये उदार भाव ग्रहण करने का है। आप भाई बहन सब भाव बदलने, केवल आपको नया खर्चा करना नहीं पड़ेगा, नया कोई काम करना नहीं पड़ेगा, केवल भाव मेरी सबके लिए, हमारी संपत्ति वो सबके लिए है। आप संति के संपत्ति के रखवाले हो, पर काम पड़े तो अन्न जल आप लेते हो, ऐसे उसको अन्न जल उसको दे दो, अन्न दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, औषध दे दो, कि भाई तुम्हारे आवश्यक तुम ले लो, कि पूरा पूरा दे दो, पूरा तो मैं भी नहीं देता, मैं भी मेरे आवश्यक ले दो, तुम भी आवश्यक नहीं ले लो और रक्षा करो उसकी। तो रक्षा करना आपका काम है और दूसरों को हित करने काम है जो देने है। तो ऐसा व्यापक भाव भगवान का है सबका हित करने का, तो कितनी बढ़िया बात है। तो ये गीता की उदारता है, हमारे भाई बहन सब इसका पालन कर सकते हैं, साधु सन्यासी पालन कर सकते हैं, दरिद्र से दरिद्र इस भाव को रख सकते हैं और धनी से धनी भी इस भाव को रख सकते हैं। धन है किसका है पता नहीं, तो पता क्या लगे, कोई भूखा आ जाए तो भूखे आदमी को अन्न दे दिया, वो अन्न उसी का स्मरण दे दिया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्य मेव समर्पये। जैसे हमारे पास वस्तु पड़ी है उसको मालिक आज दे दिया। जैसे कोई एक सज्जन आता है कि भाई आज मेरे को मेले में जाना है, तो मेरे पास 1000 रुपए है, जेब कोई कतर लेगा तो किसी पास रख देगा, आप अपनी दुकान में रख लो, और जब शाम को आवे तो 1000 रुपया आपने दे दिया, तो क्या आपने दान कर दिया और फिर उसी की वस्तु दे दी। ऐसे रसोई बनती है उसमें आप भोजन कर दो और तत्काल कोई आ जाए तो उसको भी दे दो, और मैं तो दोष लगता है। ब्रह्मचारी यथे विद्या पक्वान स्वामी नाम हो तय मदत्व से भुगता चांद्रायण चरित। ब्रह्मचारी है सन्यासी है, वो आ जाए भगत पर तो उसको अन्न दे दो, थोड़ा सा दे दो, एक फुलका दे दो, इतने में आपका धर्म का पालन हो गया। और नहीं देते हो तो चांद्रायण व्रत महीने भर व्रत करे, जितना पाप लग रहा व्रत करे तो प्रायश्चित होता है। अब इसमें शंका करो, ये क्या बात भाई, हमने रसोई बनाई उसमें खाना अपने लाए, अपने पैसे कमाए, उनसे सब लाए, हमने जुटाए, हमने रसोई बनाई और तत्काल आ गया न दे तो पाप लगता है, ये कोई न्याय है? इसका उत्तर सुनो, जो सन्यासी है त्यागी कुछ अपने पास में नहीं रखता तो वो धन कहाँ गया। अभी मैं विचार करूँ तो 100, 200, 500, 1000, 2000 तो मैं कमा ही सकता हूँ, रख भी सकता हूँ। अब वो नहीं लिया तो आप में तो रहा हो, तो भक्त पर रोटी मांग रोटी तो दे दो, आपने 1000 रुपए हमारे लिए हैं, तो मैं कर सकता था, एक विनोद की बात है, तो मैं कमा तो सकता ही था ना, 1000, 2000, 10000 तो पैदा कर ही सकता हूँ, पढ़ा कर सकता हूँ, काम खेत में काम करके कर सकता हूँ, दुकान पर काम करके कुछ तो कमा ही सकता हूँ। वो मैंने नहीं लिया तो वो कहाँ रहा, आप में रहा, तो भक्त पर भोजन के लिए आ जाए, रोटी का टुकड़ा दे दो, काम आप तो पूरा अपूर्ण हो गए। परस्पर भावी अंतर संसार का काम परस्पर एक एक की सेवा किए बिना काम नहीं चलता। देवान भावयता ने ते देवा भावयंत वह परस्परम भावी अंतर श्रेय परम वापस था। कितनी विलक्षण बात है, आप देवताओं का पूजन करो, देवता वर्षा घाम वायु आदि के द्वारा आपका पूजन करे, परस्पर करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाओ। कितनी विस्तृत बात है, अपनी ममता करके बांधो मत, अपने को बांधते हो, समझते तो हो कि मैं धन को मेरा बनाते हो, आप अपना धन नहीं बनता है, धन के आप गुलाम बन जाते हो, क्षमा करना बुरा मत माना, धन के आप दास बन जाते हो, जो धन आपका कमाया हुआ आपका पैदा किया हुआ उसके परवश हो जाते हो, ये बंधन है। तो गीता कहती है बंधन क्यों करो, आपने दुनिया से किसी हीरे से काम करके धंधा करके व्यापार करके खेती करके किसी तरह से इकट्ठा किया तो संन्यास इकट्ठा हुआ और वो दे दें, सीधी बात है, सरल बात है। एक बात याद आ गई, कई वर्षों की बात है, 2000 से कोई 10-15-20 पहली वर्ष के 60-70 वर्ष होगा, 60-65 वर्ष कलकत्ते में गया था, कलकत्ते रहा कई दिन सत्संग कराता था वहां रहता था, तो बांकुड़ा जिले में अकाल पड़ गया तो उसमें श्री जयदाल जी ने कई जगह कीर्तन खोल दिए, कीर्तन में 2 घंटा आ जाओ और अपना आशीर चावल ले जाओ, उस चावल जाओ बनाओ खाओ, पैसा देने से पैसे मछली खरीदेंगे मांस खरीदेंगे, मन चावल तो खाएंगे ही और क्या करेंगे, भूखे हैं पैदा हुई नहीं है, ऐसा देखो 100-125 जगह ऐसे कीर्तन के खोल दिए, तो उसमें 2 घंटा कीर्तन कर जाओ चावल ले जाओ। तो बहुत सदाव्रत बता, तो शेर जी स्वयं जयदाल जी गए देखने के लिए, तो अपनी मोटर लेकर के सब जगह देखा, तो रात्रि में जहाँ ठहरे वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, आपने हमारे को जिला दिया, जिले को जिला दिया आपने, बड़ी कृपा करी, ऐसे बहुत बंगाली इकट्ठे हुए प्रशंसा करने लगे। तो गोविंदका जी बोले जयदाल जी गोविंदका कि देखो तुम झूठी प्रशंसा करते हो, हमने क्या खर्च किया है, हम मारवाड़ से आए यहाँ और दुकान करी, यहाँ बंगाल से जितना कमाया वो सबका सब दे दे, तब तो आपकी चीज आपको दी, फिर मारवाड़ से ला कर दे तो हमने दिया, हमने क्या दिया, आपकी चीज आपको दे दी, पर सच्ची बात की है। तो ऐसे हरेक को देना है, वो अपनी चीज उसी की है, वो उसी की हिस्सा है, तो उसको दे दिया तो ऋण हो गया, नहीं तो ऋण रह जाएगा आपका। इस बात से दूसरों की सेवा कर दी, उसमें सेवक पने का अभिमान भी ना हो कि भाई इनके हिस्से की चीज इनको दे दिया, रसोई बनते हो, बच्चे भी खाते हैं, स्त्रियों भी खाती है, पुरुष भी खाते हैं, सबका हिस्सा आए तो सबको दे दिया। ऐसे भूखा आ जाए कोई, उसका भी हिस्सा हो गया, कुत्ता आ जाए, कौआ आ जाए, उसको दे दिया, उसका हिस्सा दे दिया उसको, ऐसे निर्णय हो चलो आपका कल्याण हो जाए। तो एक कल्याण की युक्तियां विलक्षण गीता में बताइए, स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ सिद्धि मंदिर मानवा, अपने कर्मों से पूजन करो, ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म के द्वारा दुनिया का पूजन करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म के द्वारा दुनिया का पूजन करे, वेश वेश के द्वारा संपूर्ण वेश कर्म के द्वारा पूजन करे, शूद्र अपने कर्म के द्वारा सब पूजन करे, सबका पूजन सबका हित करे और अपना कल्याण हो जाता है। ये बात गीता में विलक्षण रीति से बताई गई है। तो गीता का उद्देश्य मात्र मनुष्य का कल्याण करना है, किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी समुदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, कि त्याग करे, और त्याग का समय आएगा, जैसे मैंने कहा विधि में तो अलग अलग होंगे पर त्याग में सब एक हो जाएंगे, सब मत में त्याग आता है, सब में त्याग जिसमें अधिक होता है वही मत में श्रेष्ठ हो जाता है, वही पुरुष श्रेष्ठ हो जाता है, जैसे त्याग होता है तो त्याग सबके हित के लिए हित ही रहता है, हित सुख पहुंचाओ, अब सुख चाहते हो तो औरों को भी सुख पहुंचाओ, आप नहीं चाहते और कुछ नहीं रखते हो तो आप पर लागू भी नहीं होता। सीधी बात है भाई, इनकम पर टैक्स लगता है, आपने कमाया है तो उसका आपको लगेगा टैक्स लगेगा, आपने कमाया नहीं कैसे टैक्स लगेगा। ऐसे आप अपना मानते हो, अपनी चीज है तो आने वालों को दे दो, आप कोई भूखा या अन्न दे दो, जल पिला दो, कपड़ा दे दो, औषध दे दो, आश्रय दे दो, अपने पास है वैसा दे दिया है, इतना उतना ही दे दिया महाराज, इतनी है आप ही करो, हम भी पाएंगे मौज से, सब चीज मैं भी खर्च नहीं करता, आपको भी नहीं देता, वो रह जाएगी, वो पड़ी रहेगी, उनको कहते तुम देते रहना भाई, कमाते रहना, देते रहना, इस तरह की परंपरा हमारी शास्त्रीय है। तो गीता इस सिद्धांत को बता रही है, ये चेता रही है ऐसे करो। तो गीता का अर्थ है वास्तव में सबका कल्याण, और सबके कल्याण में अपना सब कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण, हमारा कल्याण बाकी रहेगा। जो श्रद्धा व्रत बांटता है, भूखों को सबको अन्न देता है, तो क्या वो भूखा रहेगा, क्या उसको भोजन नहीं मिलेगा, अरे उसको हाथ में तो सब भोजन है, सबको देता है, ऐसे सबका हित करने वाला प्राणी अपना हित कर देता है, स्वाभाविक हित हो जाता है। तो इस तरह सर्वभूत हितेरता जो भाव है, ये भाई बहन सब कर सकते हैं, धनी से धनी गरीब से गरीब कर सकते हैं। एक साधु थे, उस साधु से प्रश्न पूछा कि महाराज आप भोजन कहाँ पाते हो, पास में तो कोटी पैसा है नहीं, भोजन कहाँ पाते हो, कि भिक्षा पा लेते हैं, भिक्षा मिल जाती वो पा लेते हैं, अरे भिक्षा ना मिले तो कहीं भूख ही पा लेते हैं, भूख को ही पा लिया, बड़ी पिछली बात भूख कैसे पा लिया, कि आज बस भूखे रहेंगे, आज भगवान ने कह दिया भिक्षा नहीं मिले तो भूख पड़ी, आज भोजन नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज भोजन नहीं करेंगे, भूख कोई पा लिया, तृप्ति हो क्या क्या पाया, आज भूख को पा लिया, प्यास कोई पा लिया, आज बस। तो भाई जिस स्थिति में रह गए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो इस वास्ते गरीब हो चाहे धनी हो, चाहे बहुत परिवार वाला हो चाहे अकेला हो, चाहे बलवान हो चाहे निर्बल हो, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, कल्याण में सबका भाग है, परमात्मा के सुख सबका है। अरे एक माँ के बेटा होते हैं, पांच दस बेटा हो जाए एक माँ के, तो क्या माँ का हिस्सा होगा, कभी दस हिस्सा है तो इतना हिस्सा मेरा है, इतना हिस्सा मेरा टुकड़ा होगा, नहीं माँ पूरी की पूरी सबकी होगी, दसों बेटा भी अपने अपनी माँ को पूरी माँ अपनी मानेंगे, ऐसे भगवान हमारे पूरे के पूरे हमारे हैं, हम काम तो करें जितना ही करें पर भगवान का हिस्सा नहीं होता, कि इतने आदमी होते इतना हिस्सा होगा भगवान का, भगवान पूरे हमारे हैं, जैसे पुत्र सबके सबके, माँ पूरी की पूरी सबकी, ऐसे हम काम करते हुए सबका हित करें। बच्चे आपस में लड़ते हैं तो गलती करते हैं, अरे लड़ते क्यों, तुम भी भोजन करो, तुम भी भोजन करो, तुम भी माँ की गोदी में जाओ, तुम भी माँ की गोदी में जाओ, माँ सबको प्यार करती है, लड़ाई क्यों करते हो, ऐसे आपस में लड़ाई क्यों करें, सब मिल करके प्रेम से सबका हित करते हुए सबका कल्याण करते हुए चलो। तो गीता की मान्यता यह है, गीता का ये सिद्धांत है, ऐसे आप करो तो गीता के अनुसार जीवन बन जाएगा। अब इसमें कोई विशेष शंका आपके हुई हो तो पूछ लो, क्यों समय हो गया अब ज्यादा समाप्त करते हैं। कोई अड़चन आती हो, पात्र योग्यता सब देखना चाहिए, परंतु अन्न जल वस्त्र औषधि के लिए नहीं। आपको सोना दान करना हो, कन्या दान करना हो, भूमि दान करना हो, ऐसा विशेष दान करना, उसमें देश पात्र विशेष देखना है, और ये जो आवश्यकता ये सबके होती है, इसमें ज्यादा नहीं देखना। ऐसे ज्यादा पात्र देखो तो खुद को पात्र बन जाओगे, दान होगा ही नहीं, मुश्किल हो जाएगी। इस बात मैंने यही नाम दिया है अन्न जल वस्त्र औषध, इसलिए पात्र आवश्यकता वाला पात्र हो जाता है। तो इस बात मैं कहता हूँ पात्र की खोज करो तो अपने आप पात्र हो जाएंगे, अपने को पात्र हो जाएंगे, कोई मिलेगा ही नहीं। इस बात से ये चीज ऐसी सामान्य है। मैंने बात तो कह दी, मैंने चार बात बताई, अन्न जल वस्त्र औषध, इसके लिए आवश्यकता वाला ही पात्र है। अब ब्याह नहीं हुआ तो अपने कन्या उसको दे दे, ब्याह नहीं हुआ ये नहीं होगा। क्या कहते हैं आजकल, आजकल क्या कहते हैं, ठीक समझे नहीं भाई, तुम सुनो भाई ठीक है, हम पूरा समझ नहीं पाए, बहुत ही कठिन है। आपका हृदय साक्षी दे कि वास्तव में ये भूखा है तो दे दो, इसमें अपात्र हो तो आपको पाप नहीं लगेगा। अपनी जानकारी में आप पात्र देख लो, अन्न जल वस्त्र औषधि चार बात बताइए, इनके लिए आपकी दृष्टि में पात्र दिखता हो दो, कहां तक आप खोज करोगे, क्या पता लगेगा।